जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 पर 7 अप्रैल 1991 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आपका भाग्य है कि आपके मंदिर में भगवान के बहुत खूबसूरत विग्रह हैं। इन विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और आपके ऑल्टर में श्री श्री राधा माधव जी का विग्रह है और श्री जी गौर निताई का भी है, शायद आपने देखा होगा, छोटी मूर्तियां। तो आप सब रोज या जितना भी हो सके प्रयास कीजिएगा भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ये जो भजन मैंने गाया था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, आप पहले भी ये भजन अवश्य ही सुन बैठे होंगे। एक बड़ा सुंदर भजन है, बिल्कुल सरल भाषा में, जिसकी रचना की थी 500 साल पूर्व एक बड़े महान वैष्णव संत जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सरल शब्दों में चैतन्य महाप्रभु जी को सबसे दया दयालु अवतार स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और वो ये दावा करते हैं कि वो सबसे पतित हैं, तो ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। तो आप भक्तों को प्रयास करना चाहें, आप सब ये भजन सीख लो। और जब तक आप नहीं सीख पाते, रोज पढ़िएगा इस भजन को और चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में भीख मांगिएगा कि आपको उनकी दया प्राप्त हो, कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सको। तो भगवद गीता का एक श्लोक हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, ये है श्लोक नंबर 9।
वेंकुरा नाम अनुशासिताराम अनोरणीयम सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य तथा रामचिन्त्य रूपम् अदित्य वर्णम तमसा परस्तात्।
कविं पुराणाम् अनुशासितारम् अनोरणीयम् सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दतारम् अचिन्त्य रूपम् अदित्य वर्णम तमसा परस्तत्। भगवान का उपदेश हमें गीता में प्राप्त होता है। कल हमारे जितने भक्त कुरुक्षेत्र रथ यात्रा के लिए आए थे, कल हम उसी स्थान में गए थे, उसी पेड़ के नीचे जहाँ की भगवान ने उपदेश दिया था 5,000 साल पूर्व। और फिर हम सब कीर्तन करते हुए गए, लगभग 5-6 सन्यासी भी थे उस स्थान में जहाँ की उम्मीद है जमीन प्राप्त होगी, जहाँ की कृष्ण अर्जुन का मंदिर हम बना पाएंगे। भगवत प्राप्ति ये है गीता के 8वें अध्याय का नाम। तो भगवान कह रहे हैं किस रूप से हमें उनकी उनका चिंतन करना चाहिए। भगवत गीता में इस विषय पर बल दिया गया है कि हमें हमारे मन को बंधु बनाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए, चाहे आप सन्यास आश्रम में हो या वन प्रमाणप्रस्थ या गृहस्थ या ब्रह्मचारी। मन को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे, और अगर आपने मन पर काबू नहीं किया तो विश्व के राजा भी बन जाओगे पर निराश रहोगे। जैसे कि शास्त्र में हमें हिरण्यकशिपु का उदाहरण प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु बहुत प्रसिद्ध राजा बन गए थे, धन की कोई कमी नहीं थी ना स्त्रियों की, जब भी वो सदा निराश रहते थे। और एक चैतन्य भागवत में हम कथा पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त थे खोलावेचे श्रीधर। भौतिक दृष्टि से वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 11 छेक थे, और एक कमरा था रहने के लिए जिसमें छत भी नहीं थी। पर वो भगवान के नाम में इतने लीन थे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दिव्य रूप को प्रकट करके उनसे कहा मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने क्या भीख मांगी, मुझे ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपका सेवक बन सकूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे महल प्राप्त हो जाए। हाँ, भगवान की आशीर्वाद से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप सुदामा विप्र की कथा पढ़ते हो, हाँ, वैसे तो भौतिक दृष्टि से वो गरीब थे। भाग्य ये था कि उनके एक मित्र था जो बहुत धनी था। क्या नाम था उनका? हाँ हाँ, तो सुदामा विप्र तो गरीब ब्राह्मण थे, संतोष थे, कोई चिंता नहीं थी। पर उनकी जो पत्नी थी ना, उनकी इच्छा थी कि जरा अच्छी साड़ियां मिले पहनने को, थोड़े गहने भी मिले, जरा ये वो झोपड़ी में जो रह रही थी जरा ज्यादा अच्छा कमरा मिले रहने के लिए। तो उनकी पत्नी बार बार ताना देती थी पति को, प्रेम से कहती थी तुम्हारा तो एक बहुत धनी दोस्त है, उसके पास क्यों नहीं जाते कुछ मांगने के लिए। पर सुदामा विप्र तो कहते थे नहीं नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी कुछ मांगने के लिए। खैर, बचपन के दोस्त थे, एक गरीब ब्राह्मण था, दूसरा ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। खैर, चावल के कुछ दाने लेकर वो गए अपने मित्र से मिलने, और जैसे ही उनके मित्र उनके महल में पहुंचे, उन्होंने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए वगैरह, बड़ी बचपन की सब चर्चा की। सुदामा से पूछा तुम ये कुछ लाए नहीं? सुदामा ब्राह्मण शर्मा गया और कहा हाँ लाया हूं आपके लिए थोड़े चावल के दाने। भगवान ने तो बड़े उत्साह के साथ उसे स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी ने भी और कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना सुदामा ब्राह्मण अपने घर के लिए रवाना हो गए, है ना। और रास्ते में क्या सोच रहे थे, अरे घर लौटूंगा तो पत्नी पूछेगी तुमने कुछ मांगा अपने मित्र से, और वो मांगने में शर्मा रहे थे, हिचक रहे थे, तो कुछ मांगे बिना वो वापस रवाना हो गए। पर जब वो अपने घर में लौटे तो उन्होंने क्या देखा, घर की जगह झोपड़ी की जगह महल, और उनकी पत्नी जो कि फटी हुई साड़ी में होती थी, बड़े सुंदर गहने के साथ रेशम की साड़ी में सजी हुई। तो वो समझ गए ये मेरे मित्र के सहयोग के बिना नहीं संभव हो सकता। खैर, अभी हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे भगवान कृष्ण सुदामा ब्राह्मण के मित्र थे, हमारे भी मित्र हैं, हम भी उनका नाम का जप रोज करते हैं ना। तुम्हारे दो कमरे के शायद झोपड़ी तो आपकी किसी के पास नहीं है, पर दो या तीन कमरे या चार कमरे का जो मकान है उसे भी महल बन जाना चाहिए। खैर, अगर आप सुदामा ब्राह्मण की भक्ति की स्थिति में पहुंचोगे शायद महल बन भी जाए, जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचो तो कुछ सोचना भी नहीं। तो मन को हमें जीतना चाहिए, मन को मित्र बनाना है। कैसे मित्र बनाए? सबसे पहले तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जो है ना तो निराकार है ना ही शून्य है। ये है भौतिक समाज के सबसे बड़े भ्रम। एक हम सोचते हैं भगवान निराकार है, एक है भगवान शून्य है। जो वैष्णव हैं वो कहते हैं भगवान साकार है, हमारा रूप है, पिता का रूप है, दादा का रूप था, परम दादा का रूप था, भगवान का रूप कैसे नहीं ही होगा। बाइबल में एक कहावत है, मैन इज मेड इन गॉड्स इमेज, मनुष्य बनता है भगवान की तस्वीर के पीछे। पर अंतर यह है, भगवान का रूप हर स्थिति में दिव्य है और आपका हमारा रूप ना दिव्य है ना दिव्य बन सकता है। तो भगवान का, भगवान साकार है, उनका रूप है, ये नहीं सोचना चाहिए वो निराकार है या शून्य है। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं नमस्ते सारस्वते देवे, कि प्रभुपाद जी ने खास करके पश्चिम देशों में ये जो विचार है निराकार के, इसका विरोध करके इसको नष्ट किया। भारत में भी आजकल हम देखते हैं कि मायावादी जो कहते हैं भगवान निराकार है, आजकल वो वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं। पहले तो हरिद्वार में ही रहते थे, अब वृंदावन तक पहुंच गए। तो आज प्रयास करें कि वृंदावन में भी भगवान का शून्य और निराकार का प्रचार किया जाए, उस स्थान में जहां की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो यह है कलियुग का प्रभाव। खैर, आज का विषय है कि हमें किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि भगवान साकार है, उनका रूप है। आप भगवान के आर्चर विग्रह की पूजा कर सकते हो, या अगर आप घर में अपने आप को मूर्ति रखने के योग्य नहीं समझते तो भगवान की तस्वीर घर में रख सकते हो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाओ और भगवान की मूर्ति की पूजा करो, जो खाओ उसको भगवान के चरणों में अर्पण करो। इस श्लोक में भगवान स्वयं अर्जुन के द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए भगवान साकार है, रूप है और वो दिव्य है। जन्म कर्म चाम दिव्यम एवं व्यति तात्पतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैतिमेति रजुना, मेरा आना जाना दोनों ही दिव्यम है। फिर भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ? जो सब कुछ जानते हैं। भागवत गीता में प्रभुपाद एक सरल उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक आदमी अपने मकान अपनी संपत्ति के विषय में ज्ञान रखता है, सरकार जो है वो सबकी संपत्ति है, सबके मकानों के विषय में ज्ञान रख सकती है। आप म्यूनिसिपल ऑफिस में जाओ तो चंडीगढ़ की हर कोठी का क्या जमीन है, किस प्रकार का मकान है, वो ज्ञानवान रहता है। पर सब कोठियों के विषय में ज्ञान तो किसी के पास नहीं है पूरे विश्व की। पर भगवान जो है सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं हर विषय के ऊपर, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो हर स्थिति में हर कार्य के साक्षी हैं, खास करके परमात्मा के रूप में वो हर व्यक्ति के कार्य का की नजर रखते हैं। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो परम भगवान हैं वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। भगवान के हजारों नाम हैं जिनमें एक नाम है सर्वज्ञ है। पुरातन जो कि सबसे प्राचीन है, ब्रह्मा समीथा में ब्रह्मा जी भगवान के वर्णन करते हैं, अनेक गुणों के अद्यतम नव्यौवनम अद्वैतम अच्युतम अनादि नव्यौवनम च अद्यतम पुराना पुरुषम। पुराना सबसे पुराने पुरुष है, पर दिखते हैं युवक के समान। आपने कभी भगवान कृष्ण की तस्वीर देखी है सफेद बालों के साथ, या दांत के बिना, या गहले चीक्स अंदर हो गई हैं? नहीं, आप बुढ़ापेपन के लक्षण कभी नहीं देखे, क्योंकि कभी वो बूढ़े होते ही नहीं है। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भौतिक दृष्टि से भगवान की आयु लगभग 128 साल की थी, पर वो दिखते थे कैसे, बिल्कुल जैसे कि वो 20 साल के हैं। तो अद्य पुराना पुरुषम नव यौवनम छ, सबसे पुराने पुरुष हैं, पर वो दिखते हैं बिल्कुल युवक के समान। जितना हम गहराई से ये इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतनी अधिक मात्रा में भगवान की महिमा को समझ सकेंगे। भगवान को समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, इसीलिए भगवान ने स्वयं व्यासदेव के रूप में वैदिक शास्त्रों की रचना की, और महान आचार्यों प्रभुपाद ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। क्यों? कि क्योंकि हम भगवान की वाणी को समझ सके, भगवान के विषय में ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो भगवान जो हैं सर्वज्ञ हैं और पुरातन हैं, सबसे पुराने हैं। जो देवता देवी हैं उनसे भी पुराने हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोग, कम बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं कि मैंने सृष्टि का उत्पादन किया है, पर मैंने नहीं किया, परम भगवान ने किया है। अद्य पुराण पुरुषम नव यौवनम च, हाँ बिल्कुल युवक है। और क्या ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व करान करणम, हर चीज के वो कारण हैं, पर हर चीज का कारण होते हुए भी उनका कोई कारण नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं, तुम कहते हो कि देवताओं के कारण भगवान है, तो भगवान के कारण कौन है बताओ हमें? तो भगवान का कोई कारण ना है ना हो सकता है, इसीलिए वो परम भगवान माने जाते हैं। जो देवता और देवियां हैं वो भगवान के अधीन हैं, वो ना तो भगवान से स्वतंत्र हैं ना ही वो भगवान के समान है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो पुरातन है। आगे वो हर चीज के नियंता हैं। भौतिक संसार में हर व्यक्ति नियंता बनना चाहता है, सच बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है बस अभी ताकत मेरे हाथ में आई है, मैं नियंता बन गया। वहां कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, राज्यपाल बनता है, क्या सोचता है कि मैं राजा बन गया हूं। दो दिन का राजा, दो दिन राजा बनोगे और समझो दो दिन की बजाय 10 साल भी राजा बन जाओ, अंत में मृत्यु के सामने तो हर व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा, बुढ़ापेपन के सामने झुकना ही पड़ेगा, रोग पीड़ा के सामने झुकना ही पड़ेगा। तो भक्त ये सोचता है कि मैं नियंता ना हूं, ना मैं बन सकूंगा। नियंता कौन है? परम भगवान और 33 करोड़ देवता देवियां सब उन पर परतंत्र हैं, उनकी आशीर्वाद पर निर्भर हैं। जो वर देवता देवियों द्वारा प्राप्त होता है परम भगवान की आशीर्वाद के कारण ही वो वर हमें प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जैसे कि समझो कोई सुविधा कोई मंत्री दे, वो दे सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री की आशीर्वाद है या ताकत उसके पास प्रधानमंत्री के द्वारा प्राप्त हुई है। तो उसी प्रकार हम वैष्णवों को समझना चाहिए कि भगवान ना ही सर्वज्ञ है ना ही पुरातन है, पर वो नियंता भी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में केवल इतनी छूट है कि आप भगवान के आदेश का पालन करो या विरोध करो, बस उसके पार आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, उनमें अगर कोई कमी भी हो तो इसे मैं पूरा कर देता हूं। तो जब भगवान देखते हैं कि मन में भावना है उनकी सेवा करने की, तो वो हमें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उनकी सेवा कर सकें। अगर हमारे में कोई कमी है तो कमी भी दूर हो जाती है अगर हम श्रद्धा के साथ भगवान के शरणागत हो। आगे क्या, लघुतम से भी लघुतम, ठीक है, लघुतम से भी लघुतम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े हैं और छोटे से, तात्पर्य में इस विषय पर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण है, आपकी आत्मा का क्या माप है, बाल के केस के कोने का 10,000वां हिस्सा। कोई विज्ञानी है यहाँ जो माप सकता है इसे? कोई माप भी नहीं सकता। और उसके अंदर भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, अंदाजा लगा लो। तो लघुतम से भी लघुतम है कौन? परम भगवान, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, प्रत्येक का पालन करता। प्रत्येक का पालन करता कौन है? परम भगवान है प्रत्येक के पालन करता। कई बार सोच की बात है, हमारे भारतीय भी के हिंदू लोग भी कहते हैं अगर हम जानवरों को नहीं मारेंगे तो वो हमको खा जाएंगे। मैंने कई बार सुना है जानवरों को हम नहीं मारेंगे तो वो हमें खा जाएंगे, तो उनको मारना ही पड़ेगा। ये बात है, जो परम भगवान है वो प्रत्येक के पालन करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे एक हाथी, हाथी कितने पाउंड कहता है दिन में? कहा जाता है 80 पाउंड,
40 किलो,
80 पाउंड, 40 किलो घास चाहिए उसे, हाँ, रोज का खाने के लिए हाथी को। और जो चींटी है उसे कितना चाहिए? एक दाना, दो दाना बस। पर भगवान के प्रबंध से, क्योंकि प्रत्येक के पालन करता है, हाथी को भी खाना प्राप्त हो जाता है, चींटी को भी। आप जंगल में जाओ, आपको कोई हाथी भूखा नहीं नजर आता। जंगल में आपको जानवर भूखे नहीं नजर आते। कई बार आपको जानवर शहर में भूखे नजर आ जाते हैं, पर जंगलों में जो कि उनके रहने का स्थान है वहां आपको भूखे नजर नहीं आते। तो परम भगवान जो है प्रत्येक के पालन करता है। हमें भूलना नहीं चाहिए भगवान है दीन बंधु, खास करके अपने भक्तों के पालन करता। हमारे प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे, एक समय एक बहुत गरीब विद्यार्थी था, तो आजकल जो टीचर वगैरह हैं वो तनख्वाह लेते हैं, हाँ, प्राचीन समय जो टीचर अध्यापक होते थे उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। जो हर शिष्य जो विद्यार्थी था वो कुछ चंदा लाकर देता था, भेंट देता था, और उसी भेंट से अध्यापक जी, उनकी पत्नी, बच्चे अपना खर्चा चलाते थे। तो अध्यापक ने कहा सब विद्यार्थियों से भेंट ले आओ। तो ये गरीब लड़का अपनी माता के पास गया और कहने लगा, सारे विद्यार्थी मेरे साथी अध्यापक के लिए कोई भेंट ला रहे हैं, आप मुझे क्या भेंट दोगे मेरे अध्यापक के लिए? माँ ने कहा, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। लड़के ने सोचा मैं खाली हाथ जाऊंगा तो सब हंसेंगे, तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। माता ने कहा कि भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है, दीन बंधु से मांगो वो तुम्हें कोई भेंट दे देगा। तो वहां दीन बंधु उपस्थित हो गए, बड़े प्रेम से उस गरीब लड़की ने दीन बंधु के लिए पुकारा। दीन बंधु जब वहां उपस्थित हुए, लड़के ने कहा कि मुझे कोई भेंट चाहिए मेरे अध्यापक के लिए, मेरी माँ तो बहुत गरीब है। तो दीन बंधु ने एक लोटा दे दिया दही के साथ और कहा जाओ ये लोटा ले जाओ। पहले तो वो विद्यार्थी देख रहा था, सोच रहा था ये दही का लोटा इससे क्या बनेगा। खैर वो ले गया अपने अध्यापक के पास दही का लोटा, उसने अपने अध्यापक को दिया, उसने ले लिया पर उसने देखा ये तो क्या दही का छोटा लोटा था, तो उसके हाथ से गिर गया। तो लोटा जब गिरा भी तो उसने देखा कि दही वो लोटे के बाहर नहीं गिरी। उसने देखा वो जितना भी वो लोटे से दही खाता था लोटा फिर से भर जाता था। तो वो समझ गया ये कोई सादा लोटा नहीं है। तो भगवान जो है प्रत्येक के पालन करता है। ध्रुव महाराज उनका अपमान किया था सौतेली माँ ने, तो उनकी माँ ने कहा मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकती, भगवान तुम्हारा सहयोग कर सकते हैं। गया जंगल में तपस्या उठाई उन्होंने, अंत में उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो उन्होंने भगवान ने क्या कहा, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मैं तो टूटे हुए शीशे को ढूंढ रहा था, अब मुझे जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे असली हीरा प्राप्त हो गया है। तो भगवान ऐसे तो भगवद गीता में कहा गया है चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरणागत होते हैं। चार स्थितियों में हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, जो जिज्ञासु है, धन का इच्छुक है, रोगी दुख में है और जिज्ञासु ज्ञानी जो ज्ञान के द्वारा स्वीकार करता है कि परम भगवान कौन है। पर चाहे किसी भी स्थिति में आप भगवान के शरणागत हो जाओ भगवान के शरणागत। हाँ आपने कथा सुनी होगी कि किस प्रकार से एक चोर कथा सुन रहा था और उसने सुना कि किस प्रकार से भगवान अपने पिता के आंगन में घूमते हैं, गहने से सजे हुए हैं। तो चोर ने सोचा मैं रोज छोटी छोटी चोरी करता हूं, ये बड़ी चोरी एक बार कर लिया सोना हीरा मोती हाथ में आ जाएंगे, फिर मेरे चोरी का धंधा मैं छोड़ दूंगा। तो यही सोचते हुए वो वृंदावन के लिए रवाना हो गया। क्या कि जब मैं नंद महाराज के आंगन में पहुंचूंगा वहां मैं देखूंगा ये सुंदर बालक को आंगन में घूमते हुए, तो किस प्रकार से मैं चापलूसी करके इनके गहने चुरा लूंगा। अंत में जब चुराने का मौका मिला, जब पहले दिन वो मिले उन्होंने कहा मुझे तुम कितने सुंदर बच्चे हो, ये लो मिठाई, मुझे ये अपने हार वगैरह दे दो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें दूंगा तो मेरी माता चिल्लाएगी, मुझे माता से पूछने दो, फिर कल आकर पूछना मेरे से। तो जब अगले दिन आए अवसर आया तो इस चोर की बुद्धि इतनी बदल गई थी कि भगवान ने कहा ले लो गहने। चोर ने क्या कहा, नहीं अब मुझे नहीं चाहिए कहने। तो किसी भी स्थिति में आप भगवान के शरणागत हो जाओ, अंत में आप अपने हृदय अशुद्ध हृदय को शुद्ध बना लेते हो। फिर आगे समस्त भौतिक बुद्धि से परे, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। भगवान को हमें अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भौतिक बुद्धि से परे हैं। आजकल के विज्ञानी और कई अध्यात्मिकवादी भी अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये अर्जुन भी नहीं कह रहे, ये तो भगवान कह रहे हैं, भौतिक बुद्धि से समझ भौतिक बुद्धि से परे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे डॉक्टर फ्रॉग का, डॉक्टर मेंढक। एक मेंढक था, अपने आप को बहुत होशियार मानता था। उसने सोचा मुझे मापने दो ये इंडियन ओशन, ये सागर कितना बड़ा है। तो कैसे मापा उसने, अपने पेट को फुला के, उसने सोचा पेट को मैं फुलाऊंगा और गिनूंगा कितनी बार कितना बड़ा है यह सागर। तो पेट को फुलाता था, थोड़ा चलता था, फिर अगला कदम, फिर पेट को फुलाता था। ऐसे पेट को फुलाते गया और अंत में पेट फट गया और मर गया। तो उसी प्रकार परम भगवान जो हैं भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप परम भगवान को भौतिक बुद्धि से नहीं माप सकते। इसीलिए भक्त जो हैं गुरु साधु शास्त्र के अनुसार परम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। वो अपने भौतिक बुद्धि से नहीं मापते। जो भौतिक बुद्धि से मापने का प्रयास करते हैं वो कभी भगवान को नहीं समझ सकेंगे, कभी नहीं। इसलिए भगवान के अनेक गुणों के विषय में ये भी कहा गया है कि वो अचिंत्य हैं, अचिंत्य। उनको आप भौतिक बुद्धि इंद्रियों से नहीं माप सकते। जैसे कि एक समय जब नारद मुनि जी लौटे थे भगवान को अपनी रिपोर्ट देकर, तो एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने नारद मुनि जी से कहा था, आप पता करना कि मुझे और कितनी देर इस भौतिक संसार में तड़फना पड़ेगा। हाँ। तो ब्राह्मण गए थे नारद मुनि जी को, भगवान ने कहा ब्राह्मण को तो कह देना कि अभी तुम्हें बहुत जन्म मृत्यु प्राप्त करने पड़ेंगे, और वो मोची को कह देना इस जीवन की समाप्ति पर तो मेरे धाम को आ जाओगे। और जब वो पूछे कि मैं क्या कर रहा था जब तुमने मेरे से चर्चा की, तो क्या कहना? हाँ हाँ, सुई के छेकने में हाथी को निकाल रहा था। तो ब्राह्मण ने तो खैर ये नहीं स्वीकार किया। जब भगवान ने कहा, क्या नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने कहा भी तुमको तो बहुत देर बहुत एक संसार में तड़पना पड़ेगा, ब्राह्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो दिन रात शास्त्र पढ़ता हूं, ये कैसे संभव हो सकता है कि मुझे इतनी देर और तड़पना पड़ेगा। तो इसने स्वीकार नहीं किया। पर जब उससे पूछा, अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम मिलने गए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो हाथी को, हाँ, तो उसने देखा, मुझे पता था आप झूठ बोल रहे हो, हाथी को कोई सुई के छेप से निकाल सकता है। और जब उस मोची ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे बताओ, और जब मोची ने सुना कि भगवान हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे, मोची तो खुशी में नाचने लगा, खुशी में नाचने लगा। और नारद मुनि जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम्हें क्या विश्वास होता है कि सुई के छेक से कोई हाथी को निकाल सकता है? जैसे बड़ी बड़ी सर्कस होती है, अपोलो सर्कस, ये सर्कस, वो सर्कस, वो सर्कस में भी कोई ऐसा जादू तो कोई शायद नहीं दिखाता, हम तो सर्कस नहीं देखते, पर ऐसा जादू तो कोई नहीं दिखाता कि हाथी को सुई के छेक से निकालना, क्योंकि ये सचमुच ही कठिन असंभव कार्य है। मोची ने क्या कहा, अरे भाई ये केले के पेड़ का जो केले के पत्ते, केले का जो पेड़ है, ये पेड़ सबसे आदम में कहां था, किसके पेट में था? हाँ, छोटे से बीज में। तो भगवान जब इतने बड़े पेड़ को एक बीज में डाल सकते हैं, एक 6 फुट लंबे आदमी को एक छोटे बीज में डाल सकते हैं, तो हाथी को क्या सुई सुई के छेक से नहीं निकाल सकते? तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं, क्या एक तो हमें ये समझना चाहिए कि वो समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, फिर वो अचिंत्य हैं। भगवान के अनेक नाम है, जैसे हमने कहा सर्वज्ञ, एक और नाम है वो अचिंत्य है। वो उनको आप किसी प्रकार से भौतिक दृष्टि से नहीं माप सकते। जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति किसी स्थिति में नहीं कर सकता। वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि छोटी सी आयु में ही एक दिन वो अपने आंगन में चल रहे थे तो उन्होंने दो महान पेड़ों को नीचे गिरा दिया। पता है आपको, दो पेड़ जिसमें कौन थे? हाँ, कुबेर के पुत्र। क्योंकि उन्होंने आदर नहीं दिया था नारद मुनि जी के सामने, नंगे खड़े थे लड़कियों के साथ, तो उन्होंने उनको श्राप दिया। श्राप के साथ एक वर भी दिया। क्या वर? कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इसीलिए जब संत महात्मा द्वारा कभी श्राप भी प्राप्त होती है तो उसे हमें एक वर के रूप में समझना चाहिए। 100 साल कुबेर के पुत्र खड़े हुए पेड़ों के रूप में और फिर उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कैसे? भगवान ने कहा, मेरे भक्त नारद मुनि ने यह वचन दिया था और उन्होंने दो बड़े पेड़ों को गिरा दिया। जब वो पेड़ गिरे तो उनकी माता पिता और साथियों ने क्या कहा? अरे, छोटे से बच्चे ने दो पेड़ गिरा दिए, हमारा बेटा शायद देवता तो नहीं है। क्योंकि पेड़ गिराने से पहले उन्होंने दूसरी प्रकार की दिव्य लीला भी प्रकट कर दी थी, पुताना राक्षस को मारा था, तो अनेक दिव्य लीला भगवान ने प्रकट की। जब छोटे से ही थे तो उनकी माता ने पूछा कि मैंने सुना कि तुमने मिट्टी खाई है, तो उन्होंने अपने मुंह खोला और जब मुंह खोला तो क्या देखा? सारे विश्व को देखा। भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया अर्जुन को। तो भौतिक बुद्धि से वो परे हैं और अचिंत्य हैं। उनका जो ज्ञान जो उन्होंने दिया हजारों 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 साल पहले, वो ज्ञान आज भी आप पढ़ते हो। जैसे गीता का ज्ञान इस समय भी हम पढ़ रहे हैं, पर गीता के ज्ञान कल का दिया हुआ ज्ञान थोड़ी है, 5000 साल पुराना थोड़ी है, ये तो करोड़ों साल पुराना है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं हम सबसे कि मेरे बारे में सोचो कि मैं समझ भौतिक बुद्धि से परे हूं और मैं अचिंत्य हूं, तथा नित्य पुरुष के रूप में, नित्य पुरुष। तो कहा गया है शास्त्र में, नित्यो नित्य नाम चेतन चेतना नाम एक भाव नाम विदाती कामा। हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, पर अंतर क्या है? अंतर है क्या? हाँ है। अंतर यह है कि वो एक नित्य बाकी सब नित्यों की देखभाल कर रहा है। तो हम नित्य हैं और हम सदा नित्य रहेंगे। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो सोचते हैं क्या कि हम भगवान के साथ एक बन जाएंगे, पर हम सदा भगवान के दास रहेंगे, उनके सेवक रहेंगे। तो भगवान कह रहे नित्य पुरुष के रूप में वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। तो अंत में भगवान क्या कह रहे हैं कि वे सूर्य की भांति तेजवान हैं। भगवान के अनेक गुण हैं। पराशर मुनि जी कहते हैं, ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर यशाश्रया ज्ञान वैराग्यव चैव सन्न भागा इतना। और वो भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप के हैं। तो भगवान हमें इस महत्वपूर्ण श्लोक में ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें उनका स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार से हमें हमारा शुद्ध मन को शुद्ध बना सकते हैं। और अगर हम गीता के इस 8वें अध्याय के 9वें श्लोक को बड़े ध्यान से समझें उनकी, तो फिर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। तो आज जो हमने आपको अनेक लीलाओं कथाओं द्वारा ये जो श्लोक समझाया है ये परमेश्वर को समझने की विधि का वर्णन है। अंत हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। मन मन अभाव मद भक्तो मद याजी मन नमस्कुरु, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो। तो इस भौतिक मन को जहां भी भटके, अर्जुन ने तो कह दिया है क्या, वायु को वश में लाना ज्यादा सरल है मन को वश में लाने से। पर भगवान कहते हैं कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफल होगे। इसीलिए संतों का कहना है कि हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। भगवान जो लीला प्रकट करते हैं ये जो कृष्ण कथा है इसका हमें स्मरण करना चाहिए। और अगर हम इस कृष्ण कथा का स्मरण करेंगे तो इसके द्वारा ये मन जो है वश में आएगा, शुद्ध बनेगा। और शुद्ध मन से ही आप भगवान को समझ सकोगे। आखिर ये जो भक्ति के अनेक नियम हैं इनका हम पालन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इन कार्यों के द्वारा हमारा अशुद्ध मन अशुद्ध इंद्रियां शुद्ध बनेंगी। और शुद्ध मन और इंद्रियों से ही आप भगवान को समझ सकोगे। तो संक्षेप में इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का हमें चिंतन करना चाहिए। और हम सबका ये कर्तव्य है, खास करके जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हम मन को हमारा बंधु बनाएं। और इस श्लोक के उपदेश का अगर हम उपयोग करेंगे तो हम अवश्य ही परमेश्वर का चिंतन कर पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण।